यदा यदा हि धर्म
ओम शांति ओम शांति। आज हम एक बहुत सुंदर कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, एक बहुत सुंदर वर्कशॉप है और ये हमारे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। सिर्फ उत्तर ही नहीं, अगर आप इस वर्कशॉप में मन से, दिल से, आत्मा से शामिल हुए तो हो सकता है आपके जीवन के 80% प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएंगे। ये वर्कशॉप है जिससे हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की परिस्थिति के लिए बन जाएगा। दूसरा, ये जो डिजाइन योर डेस्टिनी प्रोग्राम है, इससे परमात्मा के साथ बहुत गहरा कनेक्शन बनेगा और ऐसा गहरा कनेक्शन बनेगा जो आप हर पल उस सद्गुरु के कृपा का, उसका आशीर्वाद का हाथ, उसकी सुरक्षा चक्र को आप बार बार अनुभव करेंगे। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है, दिल से इसमें शामिल हो जाना है। तो आर यू रेडी? मुझे बहुत कम सुनाई देता है। आर यू रेडी? वेरी गुड। चलिए, हम सभी इस जीवन में क्यों हैं? यह हमारा आखिरी जन्म, वन सोल वन लाइफ वन पर्पस, आखिरी जन्म, 84वां, बस एक आत्मा, उसका ये आखिरी शरीर और सिर्फ एक ही पर्पस। और वो पर्पस कौन सा? इस जीवन में मुझे क्या करना है? विकर्मों को भस्म करना है, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। एक ही जन्म, आखिरी जन्म, तो मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं आत्मा इस जीवन में मैं क्या कर रही हूं? मेरे जीवन का जो पर्पस है, क्या उस पर्पस के अनुसार चल रही हूं? ध्यान में रखना, एक ही पर्पस, मुझे मुक्त होना है विकर्मों से, मुझे जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, मुझे 84 जन्मों के खाते भरपूर करने हैं और जन्म जन्म का, 63 जन्मों का हिसाब किताब एक चुकतू करना है, दूसरा भस्म करना है, तीसरा विनाश करना है। क्योंकि अगर हमारे हिसाब किताब चुकतू नहीं हो रहे हैं, भस्म नहीं हो रहे हैं, तो ध्यान में रखिए, कितने भी वर्षों से ज्ञान में है, 20 साल से भी एक ही प्रश्न, एक ही समस्या को लेकर चल रहे हैं। कितने भी सालों से ज्ञान में है लेकिन 10 साल से एक ही स्वभाव को लेकर चल रहे हैं। मैं आत्मा दुखी बहुत रहती हूँ, प्लीज आप मुझे कुछ बताइए। मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं होता है, प्लीज आप मुझे बताइए। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज आप मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि हमने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं, हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं, कर्मों का अकाउंट सेटल कहां कर रहे हैं? कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कहां कर रहे हैं? और रही बात, बाबा जो रोज कहते हैं मुझे प्यार से याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्या मेरा वो योग ऐसी क्वालिटी वाला है? ऑनेस्टी से बताइए, मेरा योग ऐसी क्वालिटी वाला है जिससे विकर्म विनाश हो जाएंगे? बोलिए दीदिया, बोले भाइयों बहन, मिक्स है, मुझे ही गारंटी नहीं है मेरा योग इतना पावरफुल है या नहीं। तो जब मेरे विकर्म विनाश नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम क्या आएंगे? मेरे जीवन में हालात है वैसे के वैसे है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ फिर भी मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, क्यों? मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे बीमारियां क्यों हैं? बाबा तो कहते योग से तो तुम निरोगी बनते हो, पर मुझे बीमारियां क्यों हैं? अच्छा, आपस में हमारा मन मुटाव क्यों है? आपस में हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? दो सेंटर, दो बहन भाई, सेंटर की दो दीदियां या उसी सेंटर के स्टूडेंट्स आपस में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? मन में कटुता क्यों? मन में अविश्वास क्यों? असुरक्षित भावना क्यों? मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों है? मैं बहुत अच्छा योग कर रही हूं लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कुछ न कुछ चल ही रहा है, मेरी समस्या ही नहीं मिट रही है। मेरे घर में कुछ चल रहा है, लौकिक में कुछ चल रहा है, तो इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? हम सब आत्माओं की यात्रा शुरू है। पिछले जन्मों में कईयों के साथ बहुत कुछ करके आए हैं और इस जीवन में जिनके साथ बहुत कुछ करके आए हैं वही अपना चोला बदलकर, रूप बदलकर, रिश्ता बदलकर हमारे जीवन में आए हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो बीके है या चाहे लौकिक है। पिछले जन्म की अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी हो रही है, चाहे सेंटर पर, चाहे घर में, चाहे जॉब प्लेस पर, चाहे समाज में। तो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब क्या हो रहा है? पिछले जन्मों की अधूरी कहानी पूरी हो रही है। और अगर वो अधूरी कहानी पूरी करने के समय मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो शायद और एक नया विक्रम तैयार होता है। और जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक बार बार उस आत्मा के पास जन्म लेना पड़ेगा, बार बार उस रिश्ते के सामने आना पड़ेगा, जब तक वो कहानी अच्छी तरह से पूरी नहीं होती है। और इसलिए कर्मों की भाषा को समझिए, कर्मों की भाषा को समझिए। जो कर्म की भाषा को समझ जाता है उसके रास्ते खुल जाते हैं। और कर्म की भाषा क्या? मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये मेरा सब पिछले जन्मों का लिखा हुआ है, पिछले जन्मों में इस आत्मा ने जो किया है वही सामने आ रहा है, वही सामने आ रहा है। और इसलिए कहा, पाप किसी को धोखा नहीं देता, पुण्य किसी का सगा नहीं होता। जो भी आशीर्वाद मिलती है या जो भी विक्र आता है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने कर्मों से ही। इसलिए कर्म नेकी से कीजिए, कर्म ध्यान से कीजिए, न दुआ खाली जाती है न बद्दुआ। कर्म नेकी से कीजिए, ध्यान से कीजिए। और इन्हीं कर्मों का खेल समझने के लिए, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, सफेद कपड़े डाले हैं लेकिन बहुत कुछ करके आए हैं और अभी सफेद कपड़े डाले, तो हम भी दूध जैसे धुले हुए नहीं है, बहुत सारे दाग है आत्मा के ऊपर। और यही दाग मिटाने के लिए ये जन्म मिला है। और इसलिए वापस एक प्रश्न रोज रोज पूछिए, मैं इस जीवन में क्यों हूं? मैं इस जीवन में क्यों हूं? तो अपने कर्मों का हिसाब किताब, तो जो भी हमने 63 जन्मों में कर्मों का हिसाब किताब किया वो किसके साथ किया था? लौकिक के साथ। लौकिक के साथ बहुत कुछ करके अलौकिक में आए हैं और फिर हमने कहा छोड़ दिया ना लौकिक, तो भूल गए ना, आप भूल गए हैं, कर्म तो नहीं भूला ना। भूमि भूमि और कर्म का एक ही हिसाब है, भूमि और कर्म का एक ही हिसाब है। जो बोया है उसे उगना तय है, जो भी बोया है उसे उगना तय है। तो आइए हम अपने इस कर्मों के हिसाब को कैसे चुकतू करें। हम अपने जीवन में हम ये नहीं कहे कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं, बाबा की याद से होते हैं। उसके लिए योग भी अच्छा तब लगेगा जब किसी की बद्दुआ मेरे पास नहीं होंगे, जब कोई मेरे लिए नेगेटिव नहीं सोच रहा होगा, जब मैं मेरी कर्म की क्वालिटी बहुत प्योर और शुद्ध होगी तब मेरा योग बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए एक यात्रा पर, और वो यात्रा कौन सी, अपने कर्मों को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाना है। अपने कर्मों को पहले मुझे पहचानना है, मैंने क्या क्या ऐसे कर्म किए हैं। और इसीलिए आइए इस कर्म को और ग्रहों को दोष मत दीजिए जनाब, ग्रहों को और किस्मत को दोष मत दीजिए जनाब। सारा खेल तुम्हारा अपना है, किया हुआ तुम्हारे सामने है। इसलिए किस्मत को और ग्रहों को दोष मत दीजिए। साढ़े साथी चल रही है, मंगल बहुत कड़क है, राहु केतु एक ग्रह में है, घर में है, और इसलिए सब मेरा आजकल ब्राह्मण लाइफ मजा ही नहीं है। नहीं, कर्मों को ध्यान दीजिए। और इसी के लिए ये एक सुंदर यात्रा, और इस यात्रा का नाम है डिजाइन योर डेस्टिनी। और इसमें यह बहुत सुंदर बताया है कि एक एक रिश्ते का कनेक्शन आपका एक एक ग्रह के साथ है। हम ग्रहों को ज्यादा नहीं लेंगे, कर्म को ठीक करो, ग्रह अच्छा हो जाएगा, आपकी ऊर्जा अपने आप अच्छी हो जाएगी, बृहस्पति की दशा बैठना शुरू हो जाएगी। अब सूर्य ग्रह को ठीक करने के बजाय उससे जुड़ा हुआ रिश्ता उसे ठीक करो, आपकी सारी ऊर्जा ठीक हो जाएगी। आप मन को शांत करो, चंद्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बृहस्पति की दशा चाहिए, अपने गुरु सदगुरु को उसको राजी करो, आपका गुरु बृहस्पति की दशा बेस्ट हो जाएगी। ग्रहों के पीछे मत पड़ो, अंगूठियां और उसके पीछे मत पड़ो, लेकिन सिर्फ अपने कर्मों को सुधारो। और आइए इस कर्मों की सुंदर यात्रा में चलते हैं। कई लोग ये कहते हैं मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं होशियार हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे स्कोप ही नहीं मिलता, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं ब्राह्मण जीवन में। हम हैं वैसे के वैसे हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बार बार ऐसे लगता है ना, लोग मेरे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, लोग षड्यंत्र रच रहे मेरे लिए, बुरा बोलते हैं, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। कुछ न कुछ वो किसी न किसी को सुनाते हैं, मुझे चांस ही नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या, मेरा प्रकाश क्या हो चुका है, मेरा प्रकाश क्या हो चुका है, मेरा प्रकाश ढक चुका है। लगता है ऐसा किसी को, लगता है? हाँ जी ना जी, बाबा के दरबार में बैठे बोलो हाँ जी ना जी। हाँ, एक एक इसके लिए हाथ खड़ा कर रहा है, ऐसे लगता है किसको कि यस मेरा प्रकाश दबा हुआ है? अच्छा, हाथ खड़ा करो, बाबा आज सब ठीक करने वाले हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखो उसके साथ कनेक्शन किसका है। ये सूर्य ग्रह हमारे गुणों का प्रकाश नहीं फैल रहा है, इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन जिसको हम कहते हैं सूर्य, सूर्य माना क्या, सूर्य सर्व ग्रहों का राजा, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह माना क्या, सारे जगत की आत्मा। जिसका यह सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है उसको पिता पुत्र संतान का बहुत अच्छा भाग्य नसीब में होता है। वो आत्मा बहुत अच्छा पॉलिटिक्स राजकारण में वो आत्मा बहुत अच्छा नाम कमाती है, उसको राज्य और भाग्य दोनों मिलते हैं। बाबा रोज मुरली में क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें क्या देने आया हूं, राज्य और भाग्य देने आया हूं। ये राज्य राजनीति वो बहुत अच्छी करेंगे, अच्छे कुशल प्रशासक कुशल राजा होंगे वो। और जिनका सूर्य मजबूत है उनको इन सब से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जिनका सूर्य कमजोर है, अभी हम ग्रह को सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, आप कुंडली नहीं बताना, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है हम सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं, सिर्फ जस्ट फॉर द रेफरेंस। अभी जिनका यह सूर्य कमजोर है, माना सूर्य का कनेक्शन पहले लीजिए अपनी सारी जीवन की यात्रा में। सूर्य का कनेक्शन हमारे जीवन में कौन है, हमारे सारे रिश्तों का राजा कौन है? पिता। जिसका अपने पिता के साथ, लौकिक में ससुर के साथ, ठीक है, और फिर अलौकिक में परम पिता के साथ, शिव बाबा के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं है। रिश्ता अच्छा नहीं है, रिश्ता है लेकिन अच्छा नहीं है, बहुत कमजोर रिश्ता है जिनका, तो उनका क्या होता है, उनका अशुभ होता है। पिता हमेशा देता है, बाबा भी हम बच्चों को संगम युग पर सब कुछ देकर परम धाम चले जाते हैं। बाबा हम बच्चों को 84 जन्मों का वर्षा देकर परम धाम चले जाते हैं। पिता हमेशा अपने बच्चों का अच्छा करता है, और ऐसे पितृतुल्य व्यक्ति जो भी आपके जीवन में रहे हैं, पितृतुल्य व्यक्ति, चाहे वो पिता हो या पितृतुल्य व्यक्ति, अगर इनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, नहीं रहा था पास्ट में, तो अशुभ होता है। नौकरी में प्रॉब्लम आएगा, बार बार आप देखेंगे आजकल कई कई बच्चों के बार बार जॉब छूट रहे हैं, एक जॉब छूटने के बाद दूसरा जॉब पकड़ने में काफी उनको मुश्किल हो रही है, उनको एसिडिटी होती रहेगी, हड्डियों के रोग होते जाएंगे, बीपी लो होगा, पिंपल्स का प्रॉब्लम होगा, हड्डी का टूटना। अब ये सारा आपके मन के साथ कनेक्टेड है, ध्यान में रखना, मन के साथ कनेक्टेड है, ध्यान में रखना। हमारा जीवन माना क्या, एक एक जन्म माना 80% मानसिक स्थिति, 20% स्ट्रैटेजी, माना पिछला भाग्य। हमारा जीवन माना क्या, 80% मानसिक स्थिति, विचार, फीलिंग्स, शब्द, भावना, और 20% पिछला भाग्य। अभी जिसके इसमें क्या है, स्व अनुभूति की कमी है, वो खुद को रियलाइज ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं हम एजुकेटेड है, हम बहुत होशियार है, हम टैलेंटेड है, लेकिन वो ना खुद को अकेला महसूस करते हैं, बार बार अकेला महसूस करते हैं। अकेला रहना अलग है और अकेला महसूस करना अलग है, सेल्फ रियलाइजेशन की कमी है। वो बार बार दूसरों को दोष देते हैं, लोग मेरे बारे में गलत बोलते इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अरे उनके अंदर ही सूर्य बैठा है, उनके अंदर एक बहुत पावरफुल सूर्य है, और इसी कारण से क्या होता है, कभी कभी अनैतिकता, सेल्फिश बनते, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये दूसरों को दोष देते हैं। सूर्य माना सबको प्रकाश देने वाला, ऊर्जा, हमारे हृदय का पंपिंग सूरज से होता है, और जब आप उसी ऊर्जा को ढक देते हो, उसी ऊर्जा को दोष देते हो, उसी पापा को, उसी पितृतुल्य व्यक्ति को दोष लेते हो, तो उसका क्या होता है, आपके जीवन पर असर होता है। जिस आत्मा ने, जिस रिश्ते ने आपके लिए बहुत कुछ किया और आपने उनको दोष दिया, आपने उनका अपमान किया, आपने उनको अपशब्द बोले, आपने उनको सम्मान नहीं दिया, कई बार ना कुछ नहीं करना ये भी एक अपमान होता है। कुछ नहीं करना बड़ों का ये भी एक अपमान होता है। आपने उनका मान नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया, आपने ऐसे कर्म किए जिससे उनको पीड़ा पहुंची, उनकी आंखों से आंसू आए, उनका चेहरा ही उतर गया, और क्या हुआ, जिंदगी भर आप दोष देते रहे, आपके कारण मैं ऐसा हूं, आपने ना मेरे छोटे वाले को, मेरा छोटा भाई, उसको बहुत आपने मान दिया, उसको बहुत आगे बढ़ाया, मैं ऐसे के ऐसे रहा, पापा उस समय ध्यान देते मैं कहां का कहां होता, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और एक आपने उनको समय भी नहीं दिया, वो सिर्फ चाहते थे थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठो, मैं ज्यादा समय नहीं मांगता हूं, सिर्फ थोड़ा टाइम आकर बैठो, बस आपको देखा ना अच्छा लगता है, मेरी से ना कभी कभी फोन से बात किया करो, अब बहुत बिजी हो लेकिन फोन से ना कभी कभी बात किया करो। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस सूरज की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसने आपके लिए सब कुछ किया, तो वो क्या हो गया? सूर्य के ऊपर क्या लग गया? ग्रहण लग गया, है ना? और वो ग्रहण लग गया और फिर आप कहने लगे मुझे स्कोप ही नहीं मिलता है, और फिर आपने क्या किया? दोष देना शुरू किया, आपके कारण ऐसा हुआ, आपके कारण ऐसा हुआ। तो क्या करना है? खुद का प्रकाश फैलाना है, खुद का प्रकाश फैलाना है, सूर्यवंशी आत्मा बनना है। सूर्यवंशी आत्मा माना क्या? जिसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, सूर्यवंशी घराने की आत्मा, गोल्डन ऑरा। अगर ऐसा बनना है तो मुझे मेरे इन कर्मों को क्या करना होगा? कर्मों को क्या करना होगा? सुधारना होगा। कैसे सुधारोगे इस कर्मों को? किसी के पापा इस दुनिया में है और किसी के तो चले गए हैं, लेकिन वो इसी दुनिया में कहां ना कहां तो है। अच्छा, एक जन्म के पापा की बात नहीं है, 63 जन्मों की कहानी है। 63 जन्मों ने जिस आत्मा ने मेरे पिता का रोल प्ले किया है, अगर हम उस रिश्ते को करेक्ट करते हैं, उसकी एनर्जी को करेक्ट करते हैं, तो मालूम है क्या होगा? आपने पिता की एनर्जी को सुधार दिया ना, आपकी सारी मैस्कुलिन एनर्जी आपके ठीक हो जाएगी। मैस्कुलिन एनर्जी माना क्या? पिता के रिलेटेड, भाई, बेटा, बॉस, और कौन, पुत्र, इन सब की एनर्जी आपके ठीक हो जाएगी। आपने सिर्फ इस एनर्जी को ठीक करना है। तो रेडी है? क्या करना है बोलो। हम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी इसके लिए किसको जिम्मेवार हम करेंगे बोलो? इसके लिए किसको जिम्मेवार हम पकड़ेंगे? खुद को। तो कैसे बोलेंगे फिर आप? कैसे ये समझोगे? मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उठेंगे, बोलेंगे, यस। चलो बोलो बोलो। आज तो हमें एक्टिविटी के साथ करना है, है ना? एक्टिविटी के साथ। रेडी है आप सभी? हाँ बोलो। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। वापिस दो बार बोलना है, बहुत भावना से बोलो। मेरे जीवन में अभी ये पहली स्व अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति जब बढ़ जाती है ना, आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं, ग्रहों का दोष मिटना शुरू हो जाता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, इस कर्म को मुझे काटना है, सेटल करना है। तैयार है सारे सेटल करने के लिए? तैयार है? चाहे वो रिश्ता लौकिक भी क्यों ना हो, रिश्ता तो था ना, रिश्ता तो है ना, आखिर वो भी तो आत्मा है ना। तो चलो ना, एक सुंदर हम इसमें चले जाते हैं और बस आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़े रहिए और देखिए अपने बचपन में चले जाइए। आंखें बंद कर और देखे बचपन में चले जाइए। पापा ने इस दुनिया में लाया, पापा ने हमारे लिए सब कुछ किया।
किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया बन तब से शीतल छाया कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया
देखिए अपने पापा को बाबूजी को
पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया मुझे इस दुनिया में लाया मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया
जिस पिता ने आपके लिए इतना किया आंखें बंद रखिए और आपने उनको दोष दिया आपके कारण ये हुआ आपके कारण ऐसा हुआ आओ इस जन्म के जो पिता हैं उन्हें देखें उनकी मूर्त को देखें और खुद ही महसूस करें आज हमें उनसे क्षमा मांगनी है क्षमा मांगनी है उस पीड़ा के लिए वो दर्द मैंने जो उनको दिया था वो अपमान किया था उन्हें समय नहीं दिया था मैंने उनके पास नहीं बैठे थे मेरे कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कटु शब्द बोले थे आओ अपने पिताजी को सामने देखो उनके पैर पकड़ो मन ही मन और बस अश्रुपूर्ण नयनों से उन्हें कह दो मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए बोलिए आपको मुख से बोलना है जोर से बोलिए उनको सामने लाकर बोलिए मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए आपकी आंखों में आंसू आने दो इससे दिल हल्का हो जाएगा उस पाप के बोझ से मुक्त हो जाएगा क्षमा से दिल हल्की हो जाती है और बस उस एक एक शब्द पीड़ा कर्म न सिर्फ इस एक जन्म के 63 जन्मों की जिन जिन आत्माओं ने मेरे पिता का रोल प्ले किया है उन सब से मैं क्षमा चाहता हूँ क्षमा चाहता हूँ क्षमा चाहता हूँ क्षमा चाहता हूँ और देखिए आपके पिताजी उनके हाथों से आपके कंधे को पकड़कर आपको ऊपर उठा रहे हैं और गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप तो मेरे राजा बच्चे हो ना आप तो मेरे लाडले बच्चे हो ना कोई बात नहीं बेटा आपका वो बचपन था नादानी थी आप मेरे लाडले बच्चे हो बहुत प्यार से वो सिर पर हाथ रख रहे हैं दोनों की आंखों में आंसू हैं और आप हाथ जोड़कर उन्हें कह रहे हो शुक्रिया शुक्रिया बोलिए शुक्रिया 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 मुझे इस दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया मुझे ये जीवन देने के लिए शुक्रिया मुझे सारी सुख सुविधाएं देने के लिए शुक्रिया 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 और और आंखें खोल कर वचन दीजिए, आज से मैं सूर्य बनूंगा, आज से मैं अपने गुणों का, शक्तियों का, विशेषताओं का, दुआओं का प्रकाश फैलाऊंगा, आज से मैं सारे जीवन की जिम्मेवारी मैं खुद ले रहा हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। हाथ नीचे कैसे लग रहा है? रो दीजिए, आपको रोना है रो दीजिए, आंखें पोंछ लीजिए, ये जरूरी है। जितना मन हील होता जाएगा, आत्मा शांत होती जाएगी, एक एक दाग निकलता जाएगा। कैसे लग रहा है? बैठिए अपनी जगह पर और आइए एक सुंदर स्वमान का अभ्यास करते हैं। और वो स्वमान का अभ्यास, और वो है मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इस स्वमान का हम बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास करने वाले हैं। ये स्वमान देखो थोड़ा अलग ढंग से। हम सभी के अंदर भ्रकुटि के बीच में एक छोटा सा सूर्य है। क्या है वो? आत्मा। 10 सूर्यों से पावरफुल है वो आत्मा। 10 सूर्यों से पावरफुल है, ठीक है? और उस आत्मा में गुण है, शक्तियां हैं। वो सूर्य है, वो सूर्यवंशी घराने की आत्मा यहां बैठे हैं। आओ रोज हमें ये स्वमान करना है। रोज अमृत वेले के पश्चात इस स्वमान के प्रैक्टिस कीजिए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इसकी बहुत सुंदर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। सचमुच आपका प्रकाश फैलता जाएगा। और वो प्रैक्टिस आओ हम सभी मिलकर करते हैं। तैयार है आप सभी करने के लिए? तैयार है? चलिए हम सभी मिलकर वो प्रैक्टिस करते हैं। बाद में नोट करना, अभी हम उस अनुभूति में चले जाते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अभी आपको कुछ बोलना नहीं है, बस विजुलाइज करते जाइए बहुत सुंदर तरीके से। और देखिए अपने भ्रकुटि के बीच में वो मिनी सूर्य, छोटा सा बहुत पावरफुल सूर्य, जो अपने परमात्मा का सबसे लाडला बच्चा है। मैं मास्टर सूर्य इस दुनिया में अपने गुणों का प्रकाश फैला रहा हूं। देखते जाइए उस प्रकाश को। शक्तियों का प्रकाश फैला रहा हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझ सूर्य से फैलने वाला प्रकाश इस शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। मेरे शरीर के ऊर्जा बहुत सकारात्मक बन रही है। सारी बीमारियां नष्ट हो रही है। देखे सारा शरीर एक गोल्डन ऑरा से भरपूर हो गया। मेरे शरीर के चारों ओर भी देवताओं जैसा बहुत आकर्षक पावरफुल ऑरा तैयार हो गया। और मुझ सूर्य से जो सतो प्रधान आत्मा है, सूर्यवंशी घराने की आत्मा है, उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डे बाय डे मेरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एक मिनट तक इसी अवस्था में बैठे रहे। फैलाते रहे अपने प्रकाश को। ओम शांति। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? अच्छा, रिलैक्स। यस, तो आज से हमें इस स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हम ज्ञान में तो चल रहे हैं, ओम शांति एक दूसरे से मिलते हुए भी करते हैं, लेकिन मन बड़ा अशांत रहता है, मन बेचैन रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है, हमेशा एक प्रकार की इनसिक्योरिटी रहती है। कई बार कई भाई बहने हम देखते हैं डिप्रेशन में भी जाते हैं, और कई भाई बहने हैं बहुत इमोशनल है, डर लगता है उन्हें, बार बार डर लगता है कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। डर, संशय, ये मेरे बारे में किसी को कुछ बोल नहीं देवे, इसने बोला होगा, दीदी को इसने बोला होगा, तो इस प्रकार का डर, गलत फहमी, स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड माइंड रहता है। अभी पांडव भवन की भट्टी में जाऊं या फिर बाद में आऊं, ठीक है, अभी सेवा करूं या फिर बाद में करूं, फिर नेक्स्ट मंथ पे बर्थडे तभी सेवा करता हूं, ऑलवेज कंफ्यूज्ड। वो जो कहेंगे, जो जो मिलेगा उसकी नाव में बैठेंगे, उनका ऐसा जो ठोस निर्णय चाहिए वो नहीं होगा। इसको कहते कंफ्यूज माइंड, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं, वो आगे का सोचते ही नहीं है। मुझे लगा मैंने कर दिया, मेरे मन ने ये कहा, फिर कई बार बाबा का नाम देंगे, अमृत वेले ना बाबा ने टचिंग दिया मुझे, था उनका ही विचार, लेकिन नाम देंगे अमृत वेला, बाबा के कमरे में बैठी थी तो बाबा ने मुझे ये टचिंग दिया। और कई बार वो ऐसे शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं और इसका क्या रिजल्ट क्या होता है, न आगे का कुछ सोचते हैं न पीछे का, और फिर उसके बाद एक ही लाइन रहती है, पश्चाता पश्चाता पश्चाता। ये स्थिति क्यों होती है? योग भी लगा रहे, मुरली भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट देखो ये कैसा है, अस्वस्थ, बेचैन, अशांत। और हाँ, ये लोग ना कई बार वो कहते हैं, आजकल ना मैं चाबियां बहुत भूल रही हूं, मोबाइल भी भूल के आ जाते, चाबी भी भूल के आ जाते, छाता भी भूलते, गाड़ी भी भूलते। फिर मालूम है पीछे एक लाइन क्या बोलते, उम्र हो गई ना दीदी इसलिए आजकल हम भूल रहे हैं। तो उम्र तो हमारी जानकी दीदी की भी, दादी जी की भी थी, वो भी 104 साल के थे, लेकिन दादी जी की जो मेमोरी तो बड़ी अच्छी थी। तो ये क्या बात हो रही है? कई बार ऐसी आत्माओं को सुसाइड करने की दिल होती है, नहीं चाहिए ब्राह्मण जीवन मुझे, ये जीवन ही नहीं चाहिए बाबा, विनय जल्दी करा दे तू बहुत हो गया अभी अभी मुझे नहीं जीना है। ये सारी मन की अवस्थाएं हैं। और ये क्यों होती है मालूम है? ये सारा माइंडसेट है, ये सारी मानसिक स्थिति है, और ये मनोबल बड़ा कमजोर है। इसलिए हर स्थिति, हर सेवा भी उनको एक टेंशन लगती है। जो भी सेवा देंगे, हर सेवा टेंशन से करेंगे वो, क्योंकि उनकी मन स्थिति बड़ी नाजुक है, कमजोर है। और इसका कनेक्शन एक के साथ है, एक रिश्ते के साथ है। और वो रिश्ता कौन सा होगा? एक ग्रह के साथ है। वो ग्रह कौन सा? चंद्र ग्रह। हम सिर्फ चंद्र नहीं कहते, हम क्या कहते? चंद्रमा। तो कौन से रिश्ते के साथ होगा? जिसका माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा, चाहे वो लौकिक माँ हो या अलौकिक, जिनका उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा, बार बार उनका मन बेचैन, अस्वस्थ, नाराज, दुखी, कंफ्यूज्ड ऐसा रहेगा। सुसाइडल टेंडेंसी होगी, अकेलापन फील होगा, धन संचय करने में बहुत उनको क्या आगी प्रॉब्लम होगी। वो बार बार एक ही कहेंगे, दीदी बाबा की सेवा तो ऐसे लगता है सारा धन लगा दूं, लेकिन इतना नहीं है ना धन मेरे पास, बहुत दिल होती है धन लगा दो, इतना धन नहीं है, कैसे खर्चा होता है मालूम ही नहीं पड़ता है मुझे। उनके हाथ में धन टिकता ही नहीं है और धन संचय करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका जो ये मेन जो कारण है, इनका जो रिश्ता है अपनी माँ के साथ, ये रिश्ता कैसे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई है अपनी माँ को बार बार डांटते हैं, बोलते हैं, किसी किसी ने सताया है माँ को, किसी ने कहा नहीं आपको कुछ समझता नहीं, आप चुप बैठो, आप चुप बैठो, आप हमेशा गलत करते हो, आपको कुछ समझता नहीं है, किसी किसी ने बार बार बोला है। एक 40 साल का बेटा अपनी माँ को बार बार उसको श्राप ही देता है, माँ तुझे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी है वैसी है, ऐसी है वैसी। और ये करते करते उसी बेटे को हाई बीपी की प्रॉब्लम और पैरालिसिस हो गई। ध्यान में रखना, गुस्सा करने के बाद भी फिक्र करने वाली सिर्फ माँ ही होती है। गुस्सा करने के बाद भी आपकी चिंता करने वाली, आपको वापस पूछने वाली वो सिर्फ माँ ही होती है। और ऐसे रिश्ते को आपने डांटा था, ऐसे रिश्ते का अपमान किया था, ऐसे रिश्ते से आपने बात नहीं की, और आपने सिर्फ ये कहा, बाबा ने कहा ना लौकिक के रिश्ते तोड़ दो, बाबा ने ये नहीं कहा था तोड़ दो, तोड़ निभाओ ये कहा था, तोड़ दो ये नहीं कहा था। वो भी एक सेवा थी, उन्हें ओम शांति कहना एक सेवा थी, नहीं किया। और इसलिए क्या होता है, कई बार वो कर्म तो करके आए हैं, वैसा का वैसा कर्म का फाइल पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, वो कहां ना कहां से वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। और जब योग में बैठते कभी ना कभी वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, वो आपको योग कहां लगाने देंगे, योग कहां लगाने देंगे? क्या आपने अपने बेटे पने का कर्तव्य निभाया? अगर उसने मां पने का कर्तव्य निभाया तो क्या आपने बेटे पने का कर्तव्य निभाया? अगर वो नहीं ना निभाया, वो कर्तव्य अधूरा रहा, वो फाइल अधूरी रही, और इसलिए आज भी मन अशांत है, इसलिए आज भी मन टेंशन में है। तो क्या करना है इस फाइल को, क्या करना है बोलो, वापिस हमें क्या करना है? हमें पीछे जाकर हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा। कोई भी जज जब जजमेंट देता है तो वो पहले क्या देखता है? बताओ क्या क्या कर्म किए, सब कर्म को क्या कहते, सामने लाओ, बताओ क्या क्या आपने किया, कबूल करो, कबूल करो, हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया। क्या इस कर्म की फाइल को क्या करना है, सेटल करना है, सेटल करना है या नहीं? या सिर्फ योग से करेंगे सेटल? नहीं, ये सेटल करना है. और इसे सेटल कैसे करेंगे? देखो, कई बार कई बच्चे अपने माँ को दोष देते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया ना मेरी तरफ, इसलिए आज मैं यहां हूं. आपने उस समय मुझे बहुत बोला डांटा ना, इसलिए मैं ऐसी हूं. दोष देने से हमारे अंदर दोष आते हैं. और जिनका रिश्ता बहुत अच्छा रहता है अपनी माँ के साथ, सम्मान देते हैं उन्हें, उनका ध्यान रखते हैं, ये लोग कैसे रहते हैं? बहुत दिखने में सुंदर, बहुत क्रिएटिव रहते हैं, वो प्रिंसिपल के बड़े पक्के रहते हैं, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, इमोशनल रहते हैं. इनको धन संचय करने में कठिनाई नहीं होती है. ये हिमालय पर जाकर भी आइसक्रीम बेच कर आएंगे. समझा? उनकी वाणी में भी इतनी ताकत रहती है. इनका चंद्रमा बड़ा अच्छा है. अगर आपने इस एक रिश्ते को अच्छा कर लिया, जैसे पापा के रिश्ते को अच्छा किया ना, तो पापा से रिलेटेड सारे मैस्कुलिन रिश्ते अच्छे हो जाएंगे. जितनी सारी आत्माएं उनके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे. माँ के साथ का फेमिनिन रिश्ता आपने अच्छा किया, सम्मान दिया, केयर की, प्यार दिया, शुभ भावना दी, शुक्राना किया, ये रिश्ता आपका अच्छा हो गया. तो इसके साथ साथ जो रिश्ते फेमिनिन रिश्ते कौन कौन से हैं? बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, बहू का रिश्ता, बॉस का रिश्ता, सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे. इतनी ताकत इस एक एक रिश्ते में है, एक एक रिश्ते में है. और इसलिए हमें करना क्या है, हमें इस रिश्ते को भी क्या करना है? रेडी है आप सब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए? रेडी है? तो अभी आज से हम दोष देंगे किसी को? नहीं. हाँ, आज से बोलेंगे माँ के कारण ऐसा हुआ? नहीं. दीदी के कारण ऐसा हुआ? नहीं. तो फिर अभी वापिस क्या बोलेंगे? वापिस हम अपने आप को बोलेंगे, चलो खड़े हो जाओ. मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ. मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ. ये अभी इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलो बचपन में. उस अपने बचपन में चलो. वो एक रिश्ता सबसे प्यारा, सबसे लाडला, जिस माँ ने 9 मास तक पेट में रखा, जिस माँ ने इस दुनिया में लाया, जिस माँ ने अपना सारा जीवन अपने इस बच्चे के लिए दिया, जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसने हर चीज का त्याग तुम्हारे लिए किया, खुद खाना नहीं खाया, खुद भूखी रही क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया था, तुम्हारी आवाज सुनकर वो पहचान जाती थी कि तुम उदास हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाती थी आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ है. और तुम जब बीमार पड़ते थे ना, वो रात भर तुम्हारे सिर के वहां बैठकर सिर पर हाथ घुमाती रहती थी, रात को दिन बना देती थी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए वो भागती थी. और हां, जब तुम कुछ जीत कर घर आते तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू, अपने आंसुओं को वो छिपा देती थी। वो तुम्हारी मां और तुमने उस मां को पीड़ा दी, उसको दर्द दिया, उसको भला बुरा कहा, उसका अपमान किया। चलो आज से हम दोष नहीं देंगे, लेकिन मनी मन उस रिश्ते को, उस मां को सामने लाओ। अपने हाथों से उसके पैर पकड़ो और उसे क्षमा मांगो, क्षमा मांगो उसे, मां मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। बोलो मैंने आपको जो भी दर्द दिया, दुख दिया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। आपकी आंखों में आंसू भले आने दो, बहने दो, मन हल्का हो जाएगा। और सिर्फ इस एक जन्म की नहीं, 63 जन्मों में जितनी आत्माओं ने मेरी मां का रोल प्ले किया है, उन सब आत्माओं से आज मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। वो आत्माएं इस धरती पर जहां भी है, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। और वो दृश्य देखो, वो क्षमा की मूरत, वो प्रेम की सूरत दोनों हाथों से आपको उठाकर गले लगा रही है, और उसकी भी आंखों से वो आंसू टपक रहे हैं और सिर से हाथ घुमा रही है, कह रही है नहीं नहीं बेटा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो उसका बड़ा दिल, देखो उसका विशाल दिल। और हाथ जोड़कर मां को कहो, आपने मुझे इस दुनिया में लाया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बोलते जाओ, बोलते जाओ, आपने मेरा ध्यान रखा, आपने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने मेरी पालना की, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और आज से मैं आपको वचन देता हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं शांति से निर्णय लूंगा। मैं आपकी तरह, चंद्रमा की तरह शीतल रहूंगा। और आइए इसी के साथ धीरे धीरे बैठते हैं। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? हल्कापन लग रहा है? बोझ खाली हो गया? यस, इस बोझ को खत्म करके जाओ, कर्मों के बोझ को सेटल करो। इससे मालूम है क्या होगा? मन हल्का होगा। और हाँ, एक बहुत सुंदर स्वमान का रोज अभ्यास करना है। और वो स्वमान कौन सा? मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे विचार शांत है, मेरे विचार शांत है। उसकी प्रैक्टिस, इस स्वमान की प्रैक्टिस रोज करनी है। फीलिंग में जाकर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। खुद को महसूस करना है। आओ इस स्वमान के प्रैक्टिस रोज वापस अमृत वेले के पश्चात नुमा शाम को भी इस स्वमान के प्रैक्टिस आप 21 दिन तक रोज रोज कीजिए। अब खुद देखेंगे आपका मन इतना शांत हो जाएगा, आप रिएक्ट करना छोड़ दोगे। बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हो तो कई सारे मौके आप खो देते हो। और जब मन शांत होता है ना, आपके निर्णय बहुत सही होते हैं। जितना आपका मन शांत होगा, आपके विचारों की स्पष्टता होगी। मन शांत होगा, मन बड़ा क्रिएटिव बन जाएगा, डिफरेंट आइडियाज आएगी, सेवा के आइडियाज आएगी आपको, डिफरेंट आइडियाज। मन शांत हो जाएगा, रमणीक बन जाएगा। ध्यान में रखना, हर निर्णय से भाग्य बनता है। और मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, तो भाग्य सही बनता है। और इसलिए हमें सिर्फ ओम शांति वाले नहीं बनना है, हमारे वाइब्रेशन से शांति वाले हो। चलो एक मिनट प्रैक्टिस करें शांति की। रेडी? थक गए? नहीं, शांति की प्रैक्टिस रेडी? चलो, बहुत खो जाओ उसमें, उस विजुलाइजेशन के प्रैक्टिस में खो जाते हम सभी। हाँ, और अभी वापस यहां देखो, एक छोटा सा चंद्र है, 16 कला संपन्न। मैं शांत हूं, मैं शांत हूँ, हर समय देखिए वो शांति के वाइब्रेशंस, शांति का प्रकाश, आनंद देने वाला वो प्रकाश, शीतलता देने वाला प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। और बस खो जाइए शांति का प्रकाश, शीतलता का प्रकाश सारे संसार में फैलाने में। ओम शांति। ब्रेक हो रहा है जस्टिस का, प्रोग्राम का जस्टिस के मैं उदाहरण देती हूँ और फिर आप ब्रेक के लिए जा सकते हैं। ये प्रोग्राम एक जगह पर दिल्ली में हुआ था और 3 घंटे का प्रोग्राम चला था और फिर दूसरे दिन दीदी दूसरे सेंटर पे गए थे जहाँ से स्टूडेंट आए थे और उन्होंने पूछा किसको कुछ अनुभव। 4-5 जनों ने हाथ उठाया और एक ने अनुभव कहा, ये प्रोग्राम सुनने के बाद घर पर आकर पति और पत्नी युगल ने एक डिसीजन लिया, जिस मात पिता को अलग रखा था हमने, बात नहीं कर रहे थे हम, हमने कल डिसीजन लिया हम उनको घर लाएंगे। तो बोला, जो लोग बाहर में बोलते ना ब्रह्मा कुमारिया परिवार को तोड़ती है, तो अभी हम ये उनको दिखाएंगे ब्रह्मा कुमारिया परिवार को जोड़ती है। तो इस प्रोग्राम के ये रिजल्ट है कि हमारे रिश्ते जुड़ जाते हैं एक नए आध्यात्मिक अर्थ से। ओके, थैंक यू, ओम शांति। 2 ही कंप्लीट हुए हैं, 3 कंप्लीट करेंगे आगे के इसमें। तो अभी आप ब्रेक के लिए जाएंगे। ब्रेक नहीं लेना, कोई इंतजार कर रहे होगे? अच्छा, आप जल्दी, तरबूज काट के रखा है, वेस्ट नहीं होना चाहिए भागते हुए जो। हाँ ठीक है, तो आप फटाफट कोई जाकर ये कर लो फटाफट, 2-4 भाई लोग फटाफट जाओ और करो। सब नीचे लाएंगे वहां, ठीक है, इतने सब बहनों का हो जाएगा वहां। तो ये प्रोग्राम जो है, लेकिन भाई लोग तो गए हैं, भाई लोग भी चाहिए ना, बेचारे उनका मिस हो जाएगा। ये आप प्रोग्राम बीके के लिए भी रख सकते हैं और नॉन बीके के लिए भी, है ना? और बीके को शांति। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन में धन कब आएगा और हमारे हाथ से अच्छे कार्य कब हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण भाई बहने हैं, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं, बात बात में गुस्सा है, गुस्सा और अभिमान कूट कूट के भरा है, कुछ भी पूछो गुस्से से जवाब देंगे। और फिर कहते हमारे पत्रिका में मंगल है ना, इसलिए गुस्सा बहुत है। मंगल ग्रह को दोष क्यों दे रहे आप? अपने स्वभाव को चेक करो, क्रोध कितना है अंदर? गुस्सा और तूफान, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो शांत होने के बाद ही मालूम पड़ता है नुकसान कितना हुआ है। गुस्से में बोला हुआ आपका एक शब्द आपकी 1000 सेवाओं पर पानी फेर देता है। गुस्से में बोला हुआ एक शब्द आपकी 1000 प्यारी बातों को नष्ट कर देता है। और अभिमान, अभिमान का तो क्या कहना। अहंकार से तुम्हारी अहमियत नष्ट हो जाती है। गुस्सा और अहंकार जिसके अंदर है उसको यही खुद का विनाश करने के लिए और किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुस्सा और अहंकार ही काफी है और किसी दुश्मन की तुम्हें जरूरत नहीं है। और जितना तुम अहंकार में रहते हो तुम्हारी अहमियत खत्म होती है। और जो अहंकार में रहता है ना वो क्या करता है, अभिमान में रहता, मैं सीनियर हूं, मैं कितने साल से ज्ञान में हूं, मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा विशेष कोई नहीं है, मेरे में बहुत गुण है। ध्यान में रखना, इतना बड़ा समुंदर भी एक छोटे से गुब्बारे को डुबा नहीं सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना। तो जूनियर होगा, आप जैसा बुद्धिमान नहीं होगा, आप जैसा ना योगी है ना ज्ञानी है, ना उसमें इतनी विशेषता होगी, लेकिन उसकी एक विशेषता होगी, बहुत साफ और सच्चे दिल, भगवान उसको ऊंचा उठा लेगा। और इसलिए इतना बड़ा समुंदर छोटे से गुब्बारे को भी डुबो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें डुबोने के लिए, तुम्हें नष्ट करने के लिए बस गुस्सा और अहंकार ही काफी है। और इसलिए देखो क्या चल रहा है, हम विकर्म कैसे करते जा रहे हैं। और ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह माना क्या, भाई और दोस्त के साथ कनेक्शन, भाई चाहे लौकिक भाई हो या अलौकिक भाई हो, अलौकिक भाई भाइयों में भी कितनी दुश्मनी और गुस्सा रहता है, एक सेंटर के दूसरे सेंटर से, सेम सेंटर के भाई, सेम डिपार्टमेंट या एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक शहर का दूसरा शहर, दोस्तों में भाई इनके साथ रिश्ता कैसे है, मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए, तुम्हारा हिस्सा भी मुझे चाहिए, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, खींच खींच के लेंगे दूसरे से, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, हिस्सा हो, मान हो, सम्मान हो, क्रेडिट हो, क्रेडिट हो, उसने की हुई सेवा है, उस सेवा का क्रेडिट, उसने सेवा की हम क्रेडिट लेंगे। तो ये क्या है, मंगल ग्रह है। ये मंगल ग्रह जिसका अच्छा होता है, जिसका भाई के साथ रिश्ता अच्छा है, माना देखो जिसके अंदर बहुत अच्छी देने की भावना है, भाई के साथ रिश्ता, माना भाई को देखो पहले के भाई कैसे होते थे, अरे छोटा है ना उसको कम है, तू तो बड़ा है समझदार है, दे दे इसको थोड़ा प्रॉपर्टी, क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा भाई दे देता था कोई बात नहीं, छोटा है इसको दे देता हूं, देने की भावना थी पहले भाइयों में। अभी यहां जिसका मंगल ग्रह अच्छा होगा उसका क्या होगा, शौर्य ऊर्जा, विश्व का मालिक बनना है तो शूरवीर तो चाहिए, ऊर्जावान चाहिए, मेरे में कोई ऊर्जा नहीं और मैं कह रही हूं विश्व का मालिक बन रही हूं मैं, मेरे में ऊर्जा ही नहीं है, मैं कभी भी बीमार हूं, कभी भी निगेटिव हूं, डरी हुई हूं, कैसे विश्व के मालिक बनेंगे। और जिनका मंगल बड़ा अच्छा होगा उनमें साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, वो माया से डरेंगे नहीं, किसी विघ्न से डरेंगे ही नहीं। कई बार मालूम है डर के कारण माया का आह्वान करते हैं हम, डर डर के माया का आह्वान करते हैं। और ये जिनका ये बहुत अच्छा होगा वो कैसे होंगे, पराक्रमी साहसी, इन लोगों को क्या पोस्ट मिलेगी, लीडर होंगे, कहां के सेनापति होंगे, ये शारीरिक और मानसिक शक्ति से भरपूर होंगे, दोनों प्रकार की शक्तियां होंगी, मंगल अच्छा होगा तो शारीरिक शक्ति भी अच्छी होगी, पराक्रमी रहने के लिए शरीर की ताकत चाहिए, ऐसे बीमार है, वो चैलेंज देगा क्या किसी को? लेकिन जो शक्तिशाली है वो चैलेंज कर सकता है किसी को भी। तो मानसिक और शारीरिक शक्ति के प्रेरक है, ऐसे पुलिस, सेना, खेलकूद। और मंगल अच्छा है, वो नैतिक बहुत अच्छे होंगे, नैतिकता होगी, नीति मूल्यों के साथ चलेंगे, अच्छे अच्छे कार्य होंगे उनसे, इम्पॉसिबल कार्य उनसे हो जाएंगे। ध्यान में रखना, दो शक्तियों की जरूरत है, मानसिक शारीरिक। शरीर को भी अच्छा रखना है संगम युग पर, ये शरीर अमूल्य है। वापिस ध्यान में रखो, वन सोल, वन लाइफ, वन पर्पस, एक ही आत्मा है, उसका एक ही शरीर है, ये लास्ट आखिरी। इस शरीर को मुझे बहुत अच्छा रखना है, तंदुरुस्त रखना है इस शरीर को, तभी हम अपना पर्पस पूरा कर सकेंगे। और इसी के लिए मांगलिक कार्य जोर शोर से ये करेंगे। बाबा की सेवा क्या है? सब मंगल मंगल ही कार्य है, जोर से करना है, जबरदस्ती से नहीं, बहुत प्रेम भाव से करना है। और अगर जिनका मंगल कमजोर है, माना क्या, स्वार्थी वृत्ति है, धन अशुद्धि से आ रहा है, दूसरे से छीन कर आ रहा है, दूसरों को देना पड़ता है, माना उनकी जबरदस्ती है, देना पड़ता है, तो वो धन क्या होता है मालूम है? जो धन अशुद्ध मार्ग से आया, गलत मार्ग से आया, वो धन वैसा ही जाएगा बाहर। छिनने की भावना है, धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो कोर्ट केसेस चलेंगे, प्रॉपर्टी के केसेस चलेंगे। ईगो, गुस्सा भरपूर होगा इनमें, गुस्सा। और इन लोगों को जिनके अंदर ये क्रोध है, अहंकार है, स्वार्थी, दूसरों से छिनने की भावना है, तो क्या हो जाएगा? हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बहन ने क्या किया, वो बहन काम, उसको बैग्स बनाने थे, भवन का ओपनिंग था, तो एक शॉप के पास, दुकानदार के पास गए और वो बैग उसको लेने थे, कुछ 1,000, 2,000, 3,000 बैग्स लेने थे। तो उसे उसने रेट किया, रेट किया, और जितना उसने बोला कम कम कम, भैया सेवा का कम 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 करके करके वापस फाइनल के समय वापस वो बहन उसको 20,000 और कम दिया। गुस्सा हो गया वो। वो कहती, नहीं नहीं, आपका भाग्य बन गया। वो कहता, तुम भाग्य बना रहे हो, मुझे नहीं बनाना है, मैं सेवा के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां मार्केट में कमाने के लिए बैठा हूं। बात को समझना है हमें, किसी से छीन कर लेते पैसा ना, उसका भी तो क्या बनता है, हिसाब किताब तो कर। उसने उसके बाद कहा, ब्रह्मा कुमारी को हम खड़ा नहीं करेंगे। गए थे पुण्य कमाने, पाप कमा कर आ गए। ये जो पैसा छीनने की आदत है ना, अरे वो मार्केट में बैठे हैं, वो कमाने के लिए बैठे, उनकी दिल से होती है, समझा दो, उनकी दिल होती है तो उनका भाग्य बनता है। छीन कर भाग्य मत बनाओ किसी का। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे के साथ हम, हमारा कनेक्शन कैसा है, पैसा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, उसका उपयोग हमारा कहां से हो रहा है, हम दूसरे से जो ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, चाहे वो सेवा में भी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो जो धन लक्ष्मी जैसे आई वो वैसे ही जाएगी, फिर तो या तो कोर्ट केसेस होंगे या तो कोई प्रॉपर्टी के केसेस होंगे। और फिर हाँ, जिनको बार बार गुस्सा आता है ना, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? रक्त पर पड़ेगा, हाई बीपी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और हमेशा संबंधों में कटुता होगी। रिश्ते बिगड़ते कब है? जहां स्वार्थ आ जाता है, जहां देने के बजाय मुझे इनसे क्या फायदा है, ये भावना आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। और ध्यान में रखना, धन तो आ जाएगा, भवन भी बन जाएंगे, प्रॉपर्टियां भी बन जाएंगे, स्वास्थ्य का क्या, मन की खुशी का क्या, और रिश्तों के आनंद का क्या, उसका क्या? आपको रियल केस बताती हूं, एक्चुअली उदाहरण भी, टाइम की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, चलो फास्ट बताती हूं मैं। जस्ट एक रियल केस, एक भाई एनआरआई और पूना में एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इन दोनों ने मिलकर सोचा, एक हमें क्या करना है, एक बिजनेस करना है, पार्टनरशिप कर दे। एनआरआई, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, उसे मालूम वेनारा वो बेचारे उनके वहाँ जो शब्द जबान देते सब करते, अपने थोड़े से भारत का भाई वो, उसको लगा इसको क्या समझता है, इसको कोई फैमिली नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, पैसे तो ले लिए, कंपनी फॉर्म कर दी, एक साल हुआ ऑफिस नहीं कुछ नहीं, दो साल हुए कुछ नहीं, फिर इसको समझ में आया शायद फंसा रहा है, उसने उसको फोन किया भैया ऐसा करो मेरा पैसा लौटा दो। हाँ लौटाता हो नहीं काम हो रहा है, 3 साल हो गए कुछ नहीं कर रहा था। उसने ईमेल का आंसर देना बंद किया, एसएमएस करना बंद किया। अभी ये भाई बेचारा मेरा पैसा चला गया, ज्ञानी भाई था, पैसा चला गया, अभी करे क्या, 1 साल बिल्कुल कुछ नहीं, दोनों में कुछ नहीं। एक दिन मुझे फोन आता है उस इंडस्ट्रियलिस्ट का, दीदी आप आज सेंटर पे हो? मैंने कहा हाँ है। शाम को 5 बजे हो? मैंने कहा है। दीदी आप उस भाई को बुला लो ना। मैंने कहा क्यों? मेरा काम है दीदी और आपके सामने मुझे कंप्लीट करना है। मैंने कहा ठीक है। वो जो भाई जिसने फंसाया था वो आया और उसने ना हाथ में ऐसी थैलियां थी उसके, जैसे आया मैं और वो भाई खड़े थे, आकर चरणों में गिरा और बोला दीदी माफ करो, दीदी माफ करो। मैंने कहा भाई क्या हुआ? नहीं नहीं दीदी पहले बोलो माफ करो, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि सेंटर से ही उनकी पहचान हुई थी। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा हमारे सामने नहीं, अब बाबा के सामने बैठो, बाबा को पहले बोलो। बाबा के सामने बैठा और वह थैलियां उसने वैसे रखी, पैसे थे उसमें, बाबा के सामने बैठे और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर उठा, दोनों थैलियां उठाकर मेरे पास जो भाई खड़े थे उनके पैर पकड़े और भैया माफ करो माफ करो, मैंने आपसे आप पैसे लिए, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मेरी नीयत अभी शुद्ध हो गई है, मैं आपके पैसे लौटाने आया हूं, भैया प्लीज ये पैसे ले लो गिन लो। भैया ने उसे उठाया गले लगाया, बोला मेरे भाई जब आप पैसे लेकर आए हो, जो पैसे तुम आपने मेरे से लिए थे वो आज मुझे लौटाने आए हो अपने मन से, तो गिनने की क्या जरूरत है, गिनने की क्या जरूरत है, तुम्हारे अंदर पैसे लौटाने की भावना ये बड़ी हो गई। फिर हम बैठे, फिर मैंने पूछा भैया क्या हुआ एकदम अचानक इतना व्यवहार में चेंज कैसा? तो बोला दीदी जैसे मैंने पैसे इनसे लिए थे और मेरी नीतिमत्ता बदल गई कि मुझे ये पैसे लौटाने नहीं है, मैं अपने लिए यूज करूंगा, अपने फैक्ट्री के लिए, अपने इसके लिए। मैं ये देखता गया मेरे यहाँ क्या हो रहा था, कुछ न कुछ बार बार विघ्न आ रहे थे, हमारी फैमिली में 3 जनरेशन हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, कुछ केसेस मेरे पर आ गए। मैं ये सोच में पड़ा ये क्या कॉन्स्टेंट मेरे ऊपर कुछ न कुछ हो रहा है। फिर मैंने एक कोर्स किया और उस कोर्स में बताया था अगर किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है तो आप पहले उसे क्लियर करो, किसी से किसी रूप से पैसे लिए होंगे, वो अपने दिए नहीं, किसी को बोला होगा, आप उसको क्लियर करो, तब तक आपके ब्लॉकेजेस रास्ते क्लियर नहीं होंगे। दीदी मैंने तब से लिस्ट निकाली जिनके उनके पैसे देना शुरू किया और मेरे जीवन के सारे ब्लॉकेजेस हटते गए, आज मैं बहुत खुश हूं और ये मैं भैया का पैसा लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ज्ञानी हैं लेकिन काम हिसाब किताब पैसों का तो नहीं बना रहे हैं, ये हमारा हिसाब किताब हमें क्या करेगा, ये हिसाब किताब। इसलिए धन की शुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस इसका ध्यान देना है। मेरे पास ऐसा धन नहीं आए और अगर आ गया तो मैं उसको शुक्राना के साथ लौटा दूं। और हाँ बाबा की सेवा करते हैं, जब भी बाबा की धन की सेवा करते हैं जो एनवेलप पर देते हैं आप, उस पर लिखो मेरे प्यारे बाबा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इस भाव से आपको वो क्या करना है एनवेलप सेंटर पे देना है, सेवा में देना है। आप अगर आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन वहां भी लिख दो शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब जब धन की सेवा कर ही रहे हो प्यार से तो क्यों नहीं उसमें भावना डालते, क्यों नहीं उसमें प्रेम भरते हो, तो क्या हो जाएगा उसके बहुत जबरदस्त आपको वो धन आपके पास जो आने वाला है खुशी खुशी वाला धन आता जाएगा, मल्टीपल खुशियां लेकर आ जाएगा। और इसलिए ये मंगल इस ग्रह को बहुत अच्छा समझना है। तो मंगल मंगल वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है या नहीं, और परमात्मा पूछ रहे हैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगल है या नहीं। मंगलवाड़ी के स्टूडेंट को पूछ रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे बाबा का एक सच्चा बच्चा बनना है तो अहंकार और क्रोध को मिटा दो, नहीं तो कंस और रावण के जैसा हाल होगा। जिसने मैं कहा उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, और जिसने हम कहा वो खड़ा हो गया। मैं को छोटा करो तो एकदम छोटा, अहंकार और क्रोध दो चीजें हमारे जीवन से अगर हट जाती है ना, तो ध्यान में रखना तब विश्व के मालिक बनेंगे, तब सतोप्रधान दुनिया के मालिक बनोगे। क्योंकि सतोप्रधान दुनिया का पहला नियम है पवित्रता और प्रेम की दुनिया, जहां प्रेम है वहां क्रोध को प्रवेश नहीं है, जहां प्रेम है वहां अहंकार को प्रवेश नहीं है। और इसलिए इस दो पर बहुत काम करना है, और इसीलिए वापस मंगल पर काम करो अच्छी तरह से तो आगे बढ़ते जाओगे। और इसी के लिए क्या करना है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के न हाथ न पैर, शब्द संभाले बोलिए। इसलिए बोलने के समय भी आप किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी जगह पे हो, सिर्फ शब्दों में क्या चाहिए, धीरज, संयम और शांति, तो आपकी शूरवीरता और अच्छी लगेगी। अभी हम लेते हैं चौथा ग्रह, चौथा ग्रह स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। क्योंकि क्रोध कब आता है, जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और इसलिए अभ्यास कौन सा करना है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। ये खाली योग में नहीं करना है, ये चलते फिरते करना है। आज आपको दीदी ने चार जनों के सामने डांट दिया, बोल दिया, अभ्यास करो, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मैं बहुत संयमी आत्मा हूं, अंदर से और शब्दों से, खत्म। मन में भी ना संकल्प चले, ड्रामा फुल स्टॉप, ओम शांति। न मन में चले, न मुख पे आए, न चित पढ़ो, वो स्वराज्य अधिकारी आत्मा। मुझे इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही विश्वाधिकारी बनेंगे। कई बार जबरदस्ती से सुन तो लेते हैं क्योंकि बड़े हैं, और बाहर जाकर कितनों को बताते हैं, उसके बजाय एक लेटर लिख दो बाबा को, ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है, एक्सप्रेस भी करो, दबा के नहीं रखो, आपको रिलीज करना है, आपको बुरा लगा, आप हर्ट हुए हो, आप बाबा को लेटर लिखो, मुझे इन शब्दों से आहत पहुंची, मैं बहुत हर्ट हुई है, मेरे आंखों से आंसू आ गए बाबा, लेकिन मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, मुझे अभी इस पर जीत पानी है। दीदी का जो पाठ था सो था, मेरा पाठ शांति संयम धीरज होगा। लिख दो उस लेटर में, बाबा के इसमें डाल दो, बात को खत्म कर दो। ये हो गया मंगल, अभी चलते हैं बुध की ओर। बुध बहुत अच्छा, बुध बुद्धि का ग्रह है, जिसका बुध बड़ा अच्छा वो मिट्टी का भी सोना बना लेता है। कोविड में अच्छा कमा लिया। अभी भी सोने के दाम ये हो रहे थे। ठीक है, ये जहां भी जाएगा जिसका बुध अच्छा होगा वो कहां भी पैसा कमा लेगा। ओके, अभी ये बुध ग्रह किसके साथ कनेक्शन है, वाणी के साथ, बुद्धि और वाणी, इसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। बुध स्त्री के रूप, उनके साथ कनेक्शन है, बहू बेटी बुआ ननन बहन, इनके साथ कनेक्शन है। अभी इसका क्या है, बुध माना कम्युनिकेशन स्किल, जिसे बाबा कहते हैं ना 16 कला, 16 कला में से एक कला है संवाद साधने की कला, बोलने की कला और सुनने की कला, समझने की कला, समझाने की कला। समझने की कला भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको विश्व का मालिक बनना है उसको पहले औरों को समझने की कला आनी चाहिए। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ट्राई टू रीड बिहाइंड द लाइन्स। कई कई लोग बोल नहीं पाते हैं, आप उनके शब्दों से समझ जाइए वो क्या कहना चाहते हैं। कई लोगों के भावना से, आज ही बाबा ने कहा, बुद्धि की लाइन क्लियर हो तो दूसरों के मन के भाव समझ जाओगे। तो ये बुद्धि की लाइन मना समझने की कला, व्यर्थ कुछ ना हो, तो उसको कहा गया कम्युनिकेशन स्किल। वाणी में कैसी क्या हो, वाणी में मधुरता हो, बुद्धि हाजिर जवाबी हो, व्यर्थ नहीं चले बुद्धि में, मिलनसार वृत्ति होती है। जिनका बोध अच्छा होता है ना, उनकी वृत्ति बड़ी मिलनसार रहती है, जॉली नेचर के रहते हैं। और हाँ, इनमें बहुत अच्छी शक्ति है, समझने की शक्ति। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को समझ के लो, एक दूसरे के बारे में मत बोलो, एक दूसरे के साथ बात करो। समझने की शक्ति, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो ये शक्ति चाहिए, एक दूसरे को समझना। इन्होंने ऐसा क्यों किया, कुछ कारण होगा, चलो हम पूछ लेते हैं। इनको आज मुरली में देरी क्यों हुई, कोई कारण होगा ना, चिल्लाने की जरूरत है क्या, सेवा में आने के लिए देरी हो गई, कुछ कारण हुआ होगा, है ना। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये काम क्यों नहीं किया, कारण होगा, समझो। और दूसरी बात, दूसरों को समझने की भी शक्ति, ये जिसके पास होगी उसको पैसे की तंगी नहीं होगी। जो फटाफट बोलता जाता है, फटाफट बोलता है, रिएक्ट करता है, जो कहता मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, बाबा ने कहा ना सच बोलो, मैं सबको सच ही बताता हूं, उसकी कमी उसके मुंह पे बताता हूं। इसके शत्रु ज्यादा होते हैं, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, वो जीवन में आने वाले कई मौके गवा देते हैं। ध्यान रखना, बुद्ध की कमी है, ज्ञान अंदर बहुत है लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आ रहा है। इसलिए बाबा कहते ज्ञान का यूज करो। देखो नियंत्रण बहुत जरूरी है, खर्चे पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, अगर आमदनी ना हो तो। और शब्दों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, जानकारी ना हो तो। फटाफट किसी को लेबल लगा देना, ये बहन तो ऐसी है, ये भाई तो ऐसा है, ये बाता ऐसी है, ये भाई ऐसा है, क्यों लेबल लगा रहे हो आप, क्यों कर्म का अकाउंट बना रहे हो। हर एक की कर्म की कहानी अलग है, हर एक के स्वभाव संस्कार अलग है, हर एक का विकर्मों की कहानी अलग है, हर एक आत्मा की यात्रा अलग है, हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड अलग है, हर एक का पर्पज अलग है। मैं लेबल क्यों लगा रही हूं, मैं हिसाब किताब क्यों बना रही हूं। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बुद्ध अच्छा होगा, जिसको ये समझता है कि मुझे किसी को लेबल नहीं लगाना है, लेकिन मुझे मेरी भाषा कैसी चाहिए, मेरे शब्दों में धार नहीं चाहिए, मेरे शब्दों में आधार चाहिए। मैं ऐसे शब्द ना बोलूं जो किसका मुंह क्या हो जाए, मुंह उतर जाए। मैं ऐसे शब्द बोलूं समृद्धि वाले शब्द, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ धन की नहीं होती है, प्रॉस्पेरिटी शब्दों की होती है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है, बच्चे आपके वाणी में क्या चाहिए, स्नेह, सम्मान, मधुरता, है ना, वाणी में देखो उमंग, उत्साह, आशा, ये सारे हमारे वाणी के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसी से प्रॉस्पेरिटी आती है। सम्मान, अपनापन चाहिए। देखो यहां मधुबन में हमें क्या, क्यों सभी को मधुबन की बट्टी अच्छी लगती, बताओ, यहां अपनापन मिलता है। आप नहीं ना सुबह दिखाई दे, पूछेंगे कहां गए थे बहन जी, आप सुबह आए नहीं, पूछेंगे आपको। मुरली क्लास में नहीं दिखाई दे तो भी पूछेंगे कहां गए आप, आए नहीं, अपनापन है। बाबा ने देखो क्या कहा, बच्चे सच्चा लीडर कौन बनेगा, हमारी दादियां देखो क्या देती थी सबको, अपनापन। यहां भी देखो शीलू दीदी, फिर अपनी शशि दीदी, मधुबन के सारे भाई बहन, ये क्या देते हमें, अपनापन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये अपनापन कहां से आता है? शब्दों से। अभी हम देखो ये शब्दों से कैसे अपनापन हम देते क्या एक दूसरे को, हम क्या पूछते, अच्छा कब आए, कब जा रहे, कितने दिन के लिए आए, आपके सेंटर पर कैसा, ओम शांति। अरे अपनापन दो ना, ये सब किससे मिल रहे हैं आप? कल के भावी देवी देवता है आपके पीछे, भावी देवी देवता बैठे आपके पड़ोस में, भावी देवी देवता बैठे हैं आपके साइड में, भावी देवी देवता बैठे। देवी देवताओं को प्रसन्न कैसे करते भक्ता? क्या गाते हैं, क्या गाते हैं? उनकी महिमा स्तुति है ना, आरती, ये सब गाते। और हमारे ब्राह्मण ओम शांति। अरे भाषा की समृद्धि यूज करो, इतने सारे देवी देवता वहां भक्तों की लाइन लगी प्रसन्न करने के लिए, और ये तो पास बैठे भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। बातचीत करना माना क्या? अरे क्या शब्द चाहिए। हमारे यहाँ एक भाई आते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, उनकी भाषा इतनी समृद्ध है ना, सुनते रहो, कॉन्टेक्ट वाली आत्मा है। लेकिन वो जब भी कभी भी आएंगे सेंटर पर, किसी बुजुर्ग माता को देखेंगे, पैर छुएंगे, कॉन्टेक्ट हो ले, माता जी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, माता जी हमेशा आपका आशीर्वाद इस बच्चे के सिर पर रखना, हमारे सारे बड़े काम सफल हो जाते हैं आपके आशीर्वाद से। वो माता बिचारी, ब्लड कनेक्शन कुछ नहीं है, उसको क्या दे दिया इस भाई ने, सम्मान दे दिया, आपके आशीर्वाद से मेरे काम हो जाते, आपको देखा मेरा चेहरा खिल जाता है, बस आप हमारे जीवन में हो ना, हमारा सब अच्छा होगा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। माता की एनर्जी बढ़ गई, उसको अच्छा लगा, घर में बेटा भी पूछता नहीं है, बात भी नहीं करता, ये तो देखो कितना अच्छा भाई बोल रहे मेरे बारे में, उसका स्वमान जागृत हो गया। अरे आज इसी की जरूरत है आपस में भाई बहनों को, हम आपस में किसकी बात कर रहे हैं मालूम है, वो कैसी बहन अच्छी नहीं है, वो भाई अच्छा नहीं है, उसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी, देवी देवताओं के बारे में बोल रहे, भावी देवी देवताओं के बारे में, फिर ये बराबर बदला लेंगे भक्ति में। तो क्या करना है बोलो, क्या करना है? हाथ से एक नियम, एक दूसरे की क्या करनी है, सच्चे सच्चे महिमा करो ना, छोटा भी गुण होगा, अरे गुण छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलो, एक दूसरे के साथ सम्मान से बोलो, उसका मान बढ़े ऐसा बोलो, सबके सामने उस आत्मा का मान बढ़ाओ, हमें यही करना है। तैयार है क्या, रेडी है क्या? रेडी है तो हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ। अभी आज छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा अभी हम एक एक्टिविटी लेने वाले हैं, ओके अच्छा आप भाइयों को आप समझा देंगे क्या करना है या मैंने बताना है? सभी भाई आगे आ जाए, या आपको कुछ जीतू भाई ये देने वाले सजेशन, ठीक है ओके। मैं यहाँ टीचर्स बहनों के पास जाती हूँ, सारे भाई आ जाए, सारे भाई जीतू भाई के पास आ जाए। अच्छा अभी क्या करना है, सारी टीचर्स बहनें वहां से वहां आएंगे उस दरवाजे से, ओके वन बाय वन भाई लोग लाइन बनाए, लाइट लगा दें यहाँ के।
हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, आप शिव शक्ति हो, आप विश्व कल्याणी हो, आप लक्ष्मी माता हो, आप शिव शक्ति हो, आप विश्व कल्याणी हो, आप लक्ष्मी माता हो, धीरे धीरे चलें, आप शिव शक्ति हो, आप विश्व कल्याणी हो, आप लक्ष्मी माता हो, आप विश्व, आप शिव शक्ति हो, आप विश्व कल्याणी हो, आप लक्ष्मी माता हो, आप शिव शक्ति हो। थोड़ा जोर से बोलते जाएं, आप शिव शक्ति हो। हाँ, पीछे भाई वो बोले, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे चलते जाएं, पीछे वाले भाई बोलते जाएं, थोड़ा जोर से बोले, बोलते जाएं, थोड़ा धीरे धीरे चलें, धीरे धीरे चलें, थोड़ा जोर से बोलते जाएं, पीछे वाले भाई की आवाज नहीं आ रहा है। धीरे धीरे चलें, स्लो स्लो स्लो, धीरे धीरे चलें। थोड़ा और जोर से बोले, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे, आप लक्ष्मी माता हो, आप शिव शक्ति हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, आप लक्ष्मी माता हो। थोड़ा जोर से बोलते जाएं,
ओम शांति। अपने अपने स्थान पर बैठे, बुद्ध का स्वमान है, मैं विवेकशील हूं, मैं समझदार हूं, मैं विवेकशील हूं, मैं समझदार हूं। अच्छा, अभी कैसे लगा? एक जो ये दे रहे थे, जब सम्मान देने वाले को किसको अच्छा लगा? भाई लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा। ये सम्मान घर में चल सकते? अच्छा, सम्मान लेने वालों को कैसे लगा? कोई कोई मालूम है कैसे कर रहे थे? कोई कोई भाई जो पहचान के है ना, वो जोर से बोल रहे थे। चलो, आज ब्राह्मण परिवार में किस बात की जरूरत है? फैमिली में, लौकिक अलौकिक में प्रेम की जरूरत है। बाबा प्यार का सागर तो है, हम बच्चे कब बनेंगे? हम एक दूसरे के बारे में शुभ अच्छा विशेषता वाला उनका सम्मान बढ़ाने वाला कब बोलेंगे? कोई भी आपके पास बैठे तो आपके साथ उनको वाणी से औरों के लिए देने के लिए क्या है? डोंट गो ऑन थ्योरी, रियल में क्या चल रहा है? रियल में क्या चल रहा है? आज मुझे उसको बदलना है, मुझे हिसाब किताब नहीं बनाना। आए थे पुण्य कमाने और जा रहे पाप का बोझा लेकर, क्योंकि ये वो स्थान है जहां एक का पद्म गुणा मिलता है। और हम तो यहां आए हैं पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए, तो मैं क्यों किसकी भी बुराई सुनते समय नहीं वो आत्मा बहुत अच्छी है, अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं वैसी ही आत्मा है, मुझे भी मालूम है, मेरा भी अनुभव है, ऐसे कहकर मैंने बिना वजह से उस आत्मा के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब जोड़ लिया। था उनका आपस में लेकिन मैंने भी जोड़ लिया। सावधान, आपके ही कर्म से दुआ मिलती है और आपके ही कर्म से विघ्न पैदा होते हैं। सावधान, इसलिए बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, हमने 80% विघ्न ना अपने शब्दों के कारण क्रिएट किया है। मेरे शब्दों के कारण मैंने किसी का सेवा का रास्ता ही बंद कर लिया। मैंने अपने लेबल के कारण, मेरी उनके प्रति जो सोच है उस सोच के कारण मैंने वैसा औरों को बोला और उस कारण किसी का भाग्य का रास्ता मैंने ब्लॉक कर दिया। उसको खोल दो वो रास्ते। आज आपने किसी का बंद किया, कल कोई आपका करेगा। सारे रास्ते खोल दो। और इसलिए बुद्ध को बहुत वाणी को प्रॉस्परस बनाओ, जो जो बाबा ने बोला है सब उसमें डालो, अच्छी विशेषताएं वर्णन करना शुरू करो, घर में लौकिक में अलौकिक में। नहीं बोलना है कुछ तो बोल दो, मुझे कुछ मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन वो आत्मा अच्छी है। इस पर बहुत कंट्रोल करो, अगर ये अच्छा हो जाएगा तो लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास आती जाएगी। जहां सरस्वती अच्छी है, जहां सरस्वती माँ है, वहां लक्ष्मी मैया को आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। और इसलिए सिर्फ मुरली नहीं सुनानी, सिर्फ बाबा का परिचय नहीं देना है, वो तो कर ही रहे, वो सेवा है। एक दूसरे के साथ रहना, इसलिए बाबा ने कहा परिवार में निश्चय, एक दूसरे के साथ रहना है मुझे। और इसलिए एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय आपको उनके बारे में कुछ, आपको मन खट्टा है आपका, तो एक दूसरे के साथ जाकर बात कीजिए, उनके सामने बैठकर बात कीजिए। मन में कोई बात है बोलकर खाली हो जाइए, लेकिन उनके बारे में बातें मत फैलाइए। और उसके बाद लास्ट ग्रह जो हम ले रहे हैं और वो है गुरु बृहस्पति की दशा। बाबा रोज रोज कहते बृहस्पति की दशा, बच्चे तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, तुम्हारे पर राहु की दशा, सारे भारत पर राहु की दशा बैठी, लेकिन तुम बच्चों पे बृहस्पति की दशा बैठी। ये बृहस्पति माना क्या? गुरु। नव ग्रहों में प्रमुख है देव गुरु, जिसको कहा जाता देव गुरु। सूर्य राजा है तो गुरु उसका मित्र है, गुरु मंगल शुक्र उसके मित्र है। और इसका महत्व क्या है? सूर्य राजा तो गुरु मंत्री है, जिसका गुरु बहुत अच्छा है, जिसका गुरु बड़ा प्रबल है, उस पर बृहस्पति की दशा बैठी है। उसको क्या क्या मिलेगा? हर क्षेत्र में उसको सम्मान मिलता जाएगा, हर क्षेत्र में सफलता, जहां हाथ डालो वहां सफलता मिलेगी उसको। उस ज्ञान से उसकी बुद्धि भरपूर होगी, बुद्धि बहुत अच्छी होगी उसकी, समझदार होंगे, विवेकशील होंगे, संयमी होंगे, उनको यश मिलता जाएगा, भाग्य धन का कारक गुरु होगा, क्योंकि आत्मा विकर्म नहीं करेंगे, उसके पास धन भी बहुत होगा, सुख समृद्धि स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, ध्यान में रखना, समृद्धि में सुख और स्वास्थ्य दोनों आते हैं, सिर्फ धन नहीं आता है। आजकल कई लोगों के बैंक बैलेंस बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, गिफ्ट भी बहुत है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मन दुखी है, मन डर से भरा हुआ है, रिश्तों में कटुता है, कई लोग उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। इसलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु की दशा माना क्या, सुख का कारक है सफलता है, स्वास्थ्य है, मनोवृत्ति बहुत पॉजिटिव होगी, कीर्ति उनकी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। और हाँ, जिसका गुरु अच्छा है उसकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसकी वाचा को सिद्धि होगी। कल शीलू दीदी के बारे में बताया ना, वाचा सिद्धि, वाणी का ही दान है, उस आत्मा में ऐसी क्वालिटी है ना, कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती, बोल भी नहीं सकते, वाक शक्ति, साक्षात सरस्वती माँ उनके जीवा पर बैठे हैं, वाक शक्ति है। और जिसका गुरु प्रबल नहीं है ना, उसका जीना इम्पॉसिबल होगा, हर बात की कमी होगी उसके पास। और जिसका गुरु अच्छा होगा उसकी बुद्धि सत, विवेक बुद्धि, सम्मान उसको मिलता जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान में वो आत्मा बहुत आगे होगी। और जिसका गुरु कमजोर होगा, गुरु कमजोर माना क्या, गुरु माना क्या, अभी यहां दो है, एक है सत गुरु शिव बाबा, दूसरा गुरु जिनको बाबा कहते हैं, मेरे गुरु भाई है, किसको कहते हैं बाबा गुरु भाई, टीचर्स को कहते हैं, जिनको बाबा ने निमित्त बन उस संली पे बिठाया, उस सेंटर के निमित्त बनाया है, वो है गुरु भाई। जिनका इन दोनों के साथ रिश्ता अच्छा है उनकी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी है, इन दोनों के साथ का रिश्ता अच्छा। और जिनका इन दोनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, किसी किसी का ऐसा का शिव बाबा के साथ है ना अच्छा, मेरा बाबा सब जानता है, मेरे क्या, मुझे खाली मुरली और योग, मुरली मोबाइल पे मिलती है, पीस ऑफ माइंड पे मिल जाती है, योग हम बाबा को याद करते हैं, भोग इसे देख लेते मोबाइल से, बाकी सेंटर से मेरा कुछ दीदी के साथ इतना नहीं जमता है, हमारे दीदी ऐसे ऐसे है, नहीं जमता मेरा तो नहीं जाते ज्यादा, कभी ऑकेजनली जाते नहीं। तुम्हारा गुरु के साथ रिश्ता अच्छा नहीं तो तुम्हें जीवन में प्रॉब्लम होगी, कैसा भी हो रिश्ता, ध्यान में रखना, तुम्हें वही दीदी मिलती है जिसके साथ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हें वही सेंटर मिलता है जिस सेंटर के साथ तुम्हारा कर्मों का, बोलो, वही स्टूडेंट भाई बहने मिलते जिनके साथ तुम्हारा, हमारा भी आपके साथ कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए ये भट्टी का सौभाग्य मिला है ना तो ये कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं, वेश बदलकर, पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया था इसलिए अभी ब्राह्मण वेश डालकर, रूप बदलकर, चोला बदलकर सामने आए हैं, बहन जी, भाई जी, माता जी, पिताजी के रूप में। और ये हिसाब किताब कैसे चुकतू कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम गुरु की निंदा करते हैं, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, मेरे से ऐसा कोई कर्म हो जाता है जिसको देख कर कहते ओम शांति में जाते और ये ऐसा करते, मेरे बाबा की निंदा हो गई, मेरे बाबा की निंदा हो गई, मेरे बाबा की निंदा, मेरे मुख से कुछ शब्द, ट्रेन से जाते और लड़ते बैठते सीट के लिए, बाबा की निंदा। इसलिए सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे से मेरे गुरु की निंदा होती है या मैं गुरु की निंदा करता हूं, चाहे शिव बाबा हो चाहे सेंटर की दीदी हो, दीदी ने कुछ सेवा दी, एक बहुत बड़ी सेवा थी, दीदी ने अनाउंस किया सहयोग का, धन का सहयोग, कईयों के मन में प्रश्न उठता है, दीदी को समझता नहीं क्या, सारा दिन धन का सहयोग, धन की सेवा, धन की सेवा, हम लोग फैमिली वाले हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, ये हैं, हमें परिवार को चलाना होता है, आए जाए उनका सबका देना होता है, ये सारा दिन क्या धन की सेवा? दीदी को कुछ है या नहीं? सेवा डिक्लेयर की, संकल्प किसने चला है? जितना देना है उतना दे दो ना, जितना हो सकता है, जितनी क्षमता है उतना कर दो। सेवा के बारे में थॉट, उस दीदी की बुराई करना शुरू कर दिया मैंने, दीदी ने कर्मणा सेवा दी, ये लाना ये करना, दीदी को मैं ही दिखाई देता हूं, दूसरे सेवा नहीं कर सकते क्या? मैं ही हमेशा दिखाई देता हूं क्या? मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, बैठकर उनके स्वभाव की मैं क्या कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, हमारी दीदी तो ऐसी है। आपके सेंटर की दीदी कैसी है? एक दूसरे के दीदियों की स्वभाव की चर्चा, क्या चल रहा है? गुरु का निंदक ठौर ना पाए। कभी कभी इतना अहंकार आ जाता है, मैं ही बड़ा, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सेंटर को हम ही चला रहे हैं ऐसा, और दीदियों के साथ व्यवहार ही बदल जाता है, व्यवहार ही बदल, भाषा बदल जाती है, उनके बारे में कुछ बदल जाता है, उनके बारे में आपस में वही चर्चा होती है, जब भी ब्राह्मण भाई बहने आपस में बैठते वही चर्चा करते हैं। एक जगह पर ऐसा हुआ, भाई एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, सभी सम्मान देते थे, उसका व्यवहार बदल गया दीदी के साथ, सेंटर की दीदी छोटी थी, उम्र से अनुभव से उसका व्यवहार बदल गया, इतना व्यवहार बदला, ऐसा कुछ वो करता था, आखिर उस दीदी के मुख से शब्द निकले, तू बर्बाद हो जाएगा अब तो। वो भाई मुझे अभी मिला और कहा, दीदी 2 साल हो गए हैं, सचमुच मेरी बर्बादी चल रही है, लोन का लोन चल रहा है, बीमार का बीमार रह रहा हूं, 10 बार में एक साल में मधुबन आने वाला, साल में एक बार आना मेरे से मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा, भैया ये तो गुरु की निंदा की आपने, इतनी तक आप गए ही क्यों, ऐसे कर्म आपने किए ही क्यों कि जो ब्रह्मचर्यनी के मुख से, जिसने अपनी सारी जीवन बाबा को दे दी है, भले वो गुस्सा करती है, भले उसके डिसीजन सही नहीं हो गए, ठीक है मान भी लिया, लेकिन आप उस लेवल तक क्यों गए जो उस दीदी के मुख से ये उसको निकालना पड़ा? क्या उपाय है? मुझे पूछा, क्या उपाय? भैया कुछ उपाय नहीं, सिर्फ जाकर उस दीदी से माफी मांग के आ जाओ, दीदी मेरे से गलती हो गई, दीदी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। उसने यहां किया, वहां जाकर किया, और फिर फोन करके कुछ दिनों के बाद बोलता है, दीदी अभी सब मेरा अच्छा होने लगा है, सब मेरा अच्छा होना शुरू हो गया है। अरे इन सफेद वस्त्र धारिणी बहनों को छोटा मत समझो, हाँ गलतियां होती है, उनकी भी अपनी कर्मों की कहानियां है, गलतियां होती है, लेकिन अब क्यों उनकी निंदा करें? क्यों निंदा करें? हर एक अपने अपने कर्म की कहानी लिख रहा है। मेरी कहानी मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं उसको एडिट कर दूं, मेरी कहानी मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं उसको ठीक कर दूं, मैं दूसरों की कर्म की कहानी नहीं चेंज कर सकता हूं, लेकिन कम से कम मैं गुरु की निंदा, क्या लगता है भाइयों, गुरु की निंदा नहीं करूं? वो जाने बाबा जाने, बाबा ने बिठाया ना, बाबा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेरे मुख से तो निंदा ना हो। तो लगता है कभी ऐसी हो गई? लगता कभी ऐसे संकल्प चले? बोलो हाँ जी ना जी, बाबा के दरबार में बैठे, आज कर्मों का हिसाब किताब यहां तक चुप तू करना है, बोलिए हाँ जी ना जी, चलता नहीं चलता? हाथ खड़ा करो, चलता है, हमारा हाथ चलता है बाबा, हमारे मन से और मुख से चलता है, चलता है। अरे पहले तो रियलाइज ही करना है कि हाँ मेरे मुख से निकला बाबा, मेरे मन से भी निकला, तो फिर क्या करना है? महसूस तो कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए बोलिए? गुरु को क्या करना चाहिए? गुरु से क्या मांगनी चाहिए? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? हिम्मत है, हिम्मत है, क्षमा मांगने में हिम्मत लगती है, क्षमा से ही शांति होगी, इस जीवन में क्रांति होगी। आज एक काम करना है, आज आपको दो लेटर लिखने हैं, एक बाबा को, बाबा आज तक मेरे हाथ से किसी भी प्रकार से अगर आपकी निंदा हुई है तो बाबा प्लीज आप मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। एक 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 कर्म याद कर करके आप लिखो, ऐसे मत कहना रैंडमली जितना हो गया उसकी माफी मांग दो, नहीं, याद करो और लिखो। लिखेंगे लिखेंगे, हाथ तो सबके तो नहीं आए। दूसरा लेटर सेंटर की दीदी को, दीदी यहां है तो क्षमा कर सकते, माफी मांग सकते दीदी से, हिम्मत है, हिम्मत है, दीदी लोगों को खड़ा करे, दीदी लोग खड़े हो जाओ, मिन मिन दीदियां खड़े हो जाओ। आ जाओ यहां स्टेज पे, आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, कौन 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 सेंटर के, किस किस सेंटर की दीदी आए, चलो आ जाओ जल्दी, आ जाओ जिस सेंटर के है, आ जाओ जिस सेंटर की दीदी आए, आ जाओ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, जिस सेंटर के स्टूडेंट्स आए हैं उस सेंटर की दीदी लोग आ जाओ। हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ स्टूडेंट्स। हाँ क्या, नहीं नहीं मेरा चल रहा है काम, मैं कर दूंगी बंद, हाँ मैं कर दूंगी, मैं इसको हाँ कर देती हूँ। एक मिनट रुकना। अच्छा खड़े हो जाओ स्टूडेंट, हाँ आपको बैठना नहीं है अभी, खड़ा होना है, हाँ और हाथ जोड़कर आगे आ जाओ स्टूडेंट्स, पीछे से नहीं, स्टूडेंट्स आगे आ जाओ, भाई बहने आगे जाओ, यस आगे आ जाओ भाई, इस साइड से आगे आ जाओ, यस बस बस बस। हेलो अभी फूल नहीं देने, अभी फूल नहीं देने, अभी माफी मांगे, अभी फूल नहीं देने, नहीं सिर्फ हाथ जोड़कर, साइलेंटली हाथ जोड़कर पहले दीदी से, अभी बस शांत रहो और अपने अपने दीदी के सामने खड़े हो जाओ, जाकर अपने अपने दीदी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर माफी मांगो। बहुत साइलेंटली रियलाइज करके माफी मांगो। और दीदी लोग भी माफी देवे हाथ जोड़कर, भाई लोग भी यहां खड़े हैं, बहुत साइलेंटली ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। मुख से बोलते जाओ हमें दीदी माफ करो, बोलो दीदी माफ करो, बोलो बोलो बोलो, सब सब विकर्म चुक्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और आइए अभी हम चलते हैं एक बहुत अच्छी इसकी तरफ। जो मिन है वो रहे, बाकी के टीचर्स मिन तीन चार जो है वो यहां रहे, बाकी के टीचर्स पीछे हो जाए। हाँ, मेन टीचर तीन चार ही रहे, मेन जो आपने जिसको कहा था, तीन चार मेन जो है, तीन टीचर रहे, बाकी क्या पीछे के साइड में चले जाओ। यस, चले, तीन है, यही तीन है, कौन है, आप आ जाओ, तीन कौन है, तीन, हाँ तो आप पीछे चले जाओ, हाँ वहां पर आप भी पीछे चले जाओ, ये तीन। चलो अभी हम शुक्राना भी करेंगे गुरु बाबा का और दीदियों का, है ना, शुक्राना करेंगे। भैया गीत है वो शुक्राना का, शुक्राना गाए घड़ी घड़ी दिल आपका। यस, आप अभी सबको फूल आदि दे दो, तो माफी तो मांग ली है, लेकिन अभी इसके साथ अभी आप सबको फूल दे रहे हैं। पहले प्यारे प्यारे बाबा का शुक्रिया और साथ में दीदियों का भी शुक्रिया। ओके, तालियां भी बजती रहे पीछे से जो है, जोर से तालियां, मुस्कुराते हुए शुक्राना, और दीदी लोग भी हाथ आशीर्वाद का।
शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने,
हंसते हुए मुस्कुराते हुए झूमते हुए, बीच की कुर्सी हटा दो,
आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान।
दीदी लोग मुस्कुराते हुए सीरियस क्यों, अभी माफी मांग ली,
प्यार दो जहान का।
यस यस, मुस्कुराते हुए फूल फूल आप डाल सकते हो। यस, फूल डालिए। हाँ,
अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अशकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है।
गुरु को कितना प्यार से करते हैं, ये कब करोगे, संगम युग पर ही करना है, मधुबन में ही करना है। इनको डालो बीच के बैग। हाँ, ऊपर
दुनिया की प्रीत को दिल से भुला के, खुश हूँ
वीडियो निकाले।
गुरु तेरा प्यार ही मेरा ईमान है, उसके सहारे चल रहे मेरे प्राण है, रिश्ता हमारा जैसे क्षमा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे क्षमा परवाने का,
खड़े ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलकर सदगुरु शिव बाबा को प्रसन्न कीजिए, अपने सेंटर की दीदियों के साथ, गुरु भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखे और फिर देखो ये दोनों खड़े हो जाएंगे आपके विकर्मों का खाता सेटल करने के लिए, ये आपको मदद करेंगे, अपनी जान लगा देंगे सारी, सकाश देंगे, शक्ति देंगे, मुरली के द्वारा बाबा कुछ न कुछ टचिंग्स देंगे। तो बस यही तो करना है, छोटा सा काम। ओम शांति।